ओम शांति। एक यहूदी फकीर ने कभी एक किताब लिखी थी और उस यहूदी फकीर ने वो किताब उसी गांव में रहने वाले एक धर्मगुरु के पास भेजी। जो भी धर्मगुरु थे वो सभी उस सूफी या यहूदी फकीर के विरोधी थे। फिर भी उस यहूदी फकीर ने कहा अपने शिष्य को कि ये किताब तुम उस धर्मगुरु के पास ले जाओ। शिष्य ने कहा कि आप न भेजे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ के जितने धर्मगुरु हैं, सभी आपके विरोधी है, न मालूम क्या व्यवहार करे। फिर भी उस फकीर ने कहा तुम ले जाओ, और वो शिष्य उस किताब को लेकर धर्मगुरु के घर पहुंचता है। धर्मगुरु तब बगीचे में बैठा होता है अपनी पत्नी के साथ। शिष्य उस धर्मगुरु से कहता है कि मेरे गुरु ने अर्थात उस फकीर ने ये किताब लिखी है और आपको देने के लिए कहा है। जैसे ही वो धर्मगुरु उस किताब को देखता है और नाम देखता है किसने लिखी है, उस किताब को दूर फेंक देता है और कहता है यहां से निकल जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की। अशिष्ट और दुर्व्यवहार उसके साथ वो करता है। उसकी पत्नी वहां पर बैठी हुई होती है, वो उस धर्मगुरु से कहती है माना कि आपको वो किताब नहीं पढ़नी है, परंतु फेंकने की क्या आवश्यकता थी। वो शिष्य वहां से चुपचाप निकल जाता है और वो धर्मगुरु जैसे हाथों में बिच्छू काट लिया हो। वो पत्नी उसे समझाती है आपको फेंकना ही था किताब को, तो बाद में फेंकते, उस शिष्य के सामने फेंकने की क्या आवश्यकता थी। ये दुर्व्यवहार आपने जो किया, ये उसके सामने करने की क्या आवश्यकता थी। रख लेते थे किताब, पड़ी रहती थी पुस्तकालय में, इतनी किताबें तो रखी हुई है, ये भी किताब रखी हुई रहती। शिष्य वापस आता है और उस फकीर से आप बीती सुनाता है। फकीर कहता है, वो शिष्य कहता है, वो पत्नी बहुत ही भली स्त्री थी कि जिसने अपने पति को समझाया और जिसने ये भी कहा था कि पुस्तकालय में रख देते किताब, परंतु वो जो धर्मगुरु था बड़ा ही कठोर था, बड़ा ही धर्म विरोधी था, आपका विरोधी था, बड़ा ही दुष्ट था। तो फकीर कहता है नहीं, वो जो धर्मगुरु था शायद कभी ना कभी मेरे पक्ष में आ सकता है, परंतु वो जो पत्नी है उसका आना मुश्किल है। दो व्यक्तित्व यहां पर है, मनोविज्ञान दो व्यक्तित्व की चर्चा यहां कर रहे हैं। कौन से वो दो व्यक्तित्व है, कौन से वो दो व्यक्तित्व है? एक तो वो धर्मगुरु जिसके मन में विरोध है, जिसने उस किताब को फेंक दिया और जिसके लिए फकीर ने कहा कि हो सकता है भविष्य में वो आ जाए, मेरे पक्ष में हो जाए। हो सकता है जिसने आज वो किताब फेंक दी वो किताब को उठाएगा और पढ़ेगा, परंतु वो जो पत्नी है उसका मेरे पक्ष में आना बहुत कठिन है। क्या कहा था कि किताब को पुस्तकालय में लाइब्रेरी में रख दो, पड़ी रहेगी जैसी बाकी किताबें पड़ी हुई है। मनोविज्ञान की राहें जटिल है। पहला व्यक्ति है जिसके मन में विरोध है, और जैसा फकीर ने कहा था, हो सकता है वो मेरे पक्ष में आ जाए। जैसे वो शिष्य वहां से चला जाता है और थोड़ा समय हो जाता है, तो वो धर्मगुरु सोचता है क्रोध में मैंने क्या कर दिया, और उसके मन में इच्छा जागृत होती है, आखिर ऐसा किताब में है क्या, क्यों मैं इस फकीर का हमेशा से ही विरोध करता आ रहा हूं। और वो किताब उठाता है और किताब खोलता है और किताब को पढ़ता है, और उसे लगता है हाँ इसमें तो वही सत्य है जो सदियों से सत्य है और जिसे जिसकी मुझे भी तलाश है, शायद इस फकीर ने उसे पा लिया। परंतु संभावना बहुत कम है कि वो पत्नी उस किताब को पढ़े। ये एक दूसरा व्यक्तित्व है जो कि किसी पक्ष में नहीं है, जिसके मन में कोई विरोध नहीं है, कोई संदेह नहीं है। आज सुबह की अव्यक्तवाणी फॉलो फादर की तीन स्टेप्स बाबा ने बताई है एक जगह, उसमें से पहली है नोट करना। पहली क्या है? नोट करना। नोट हम कब से कर रहे हैं? सुन हम कब से रहे हैं? परंतु स्थिति उस पत्नी जैसी ही है। मुरलियों को हम जानते हैं, सारी पॉइंट्स हमको पता है, परंतु वो सुनना, चाहे मुरली या क्लास, वैसा ही है जैसे हम किसी पक्ष में नहीं है, खाली सुन रहे हैं, क्योंकि जाना है इसलिए जा रहे हैं, मुरली सुनना है इसलिए सुन रहे हैं, क्लास सुननी है इसलिए सुन रहे हैं, परंतु कोई आंतरिक क्रांति घटित नहीं हो रही है। और वो जो धर्म गुरु है उसके मन में विरोध है, इसलिए किताब को फेंक दिया, परंतु उसी के मन में बाद में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है उसे जानने की। जिस मन में संदेह है, संशय नहीं संदेह, वही सत्य तक पहुंचता है। जिसके मन में प्रश्न उठते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, उसी के मन में सत्य को जानने की अभिप्सा जागृत होती है, और वहीं पर आध्यात्मिक क्रांति घटित होती है। केवल सुनना नहीं, केवल नोट करना नहीं, बाबा ने कहा वक्ता भी तुम बहुत अच्छे बन गए हो, बाबा की एक पॉइंट को कितनी रमणीकता से सुनाते हो, बाप तो बाप, बाप के भी सरताज हो। परंतु वो सुनाना भी एक आदत सी है, सुनाने वाले में भी, सुनने वाले तो शायद दूर, सुनाने वालों में भी क्रांति नहीं हो रही है, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सुना भी रहा है आदतन वही वही जो पहले भी सुनाया था। जब तक प्रश्न नहीं उठते, जब तक मन में एक सूक्ष्म विरोध, ये है क्या, ये क्यों कहा, ये किस लिए कहा, ये किसने कहा, किस अर्थ से कहा, क्या इस अर्थ को मैं जानता हूं, जानने का भ्रम कहीं ना कहीं पैदा हो जाता है, और यही जानने का भ्रम उन्नति को रोकता है। हमारी स्थिति भी शायद उस पत्नी जैसी ही है जो कहती है कि पढ़ी रहेगी, किताब का विरोध करने का क्या आवश्यकता है, विरोध भी मत करो, चुपचाप रखो और वो पढ़ी रहेगी लाइब्रेरी में। वैसे ही कोई किताब देता है, ले लो और रख दो, अंदर पड़ी रहेगी। कोई कुछ अच्छी बात सुनाता है, ले लो और रख दो, पड़ी रहेगी। उसका विरोध नहीं है, सूक्ष्म विरोध हो, सकारात्मक विरोध, वो विरोध नहीं कहा जाएगा, संदेह कहा जाएगा। एक है संशय, जिसके लिए बाबा कहते हैं विनाश को प्राप्त होंगे। दूसरा है संदेह, संदेह अर्थात चिंतन, प्रश्न जाग रहे मन में, ये क्यों कहा, क्या वास्तव में ऐसा है, कौतूहल है। जैसे छोटा बच्चा, प्रश्न है मन में, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, हर बात के लिए प्रश्न है उसके मन में। D.H. लॉरेंस ने एक जगह लिखा है, ब्रिटिश ऑथर, कि छोटे से बच्चे ने मुझे कहा कि मुझे बताओ ये पत्ते हरे क्यों है। छोटे से बच्चे ने पूछा और मैंने उससे कहा, बेटा मुझे भी नहीं पता, मैं क्या कहता उससे, क्योंकि मुझे तो वास्तव में पता नहीं। क्या हमें वास्तव में पता है? हाँ, विज्ञान जानता है शायद क्लोरोफिल की वजह से, परंतु क्लोरोफिल की वजह से भी क्यों है शायद हम नहीं जानते। सुन लिया, नोट कर लिया, बोल दिया, वक्ता बन गए, अर्थात ज्ञानी नहीं, एक प्रचंड आंतरिक क्रांति हो, वैचारिक क्रांति, संकल्पों की क्रांति, संस्कारों की क्रांति, भावनाओं की क्रांति, जहां पर कुंदन बन जाए सोना। तो आज की मुरली, चारों सब्जेक्ट, चार विषय और संपूर्ण ज्ञान का सार क्या है? बेहद। क्यों? ये रख दी है नोट करके डायरी, पुस्तकालय में, घर में। क्यों? बेहद अर्थात बेहद शब्द का क्या अर्थ है? बेहद के कई सारे अर्थ है। एक अर्थ है अनलिमिटेड, अर्थात असीम, अर्थात हदों से पार, अर्थात अपार, जिसका कोई पार नहीं, जिसकी कोई हदें नहीं, जिसकी कोई लिमिट नहीं, अनकन्फाइंड, अनरिस्ट्रेंड। एक अर्थ। दूसरा अर्थ बेहद का है इमेजरेबल, अर्थात जिसे गिना नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता, जिसकी थाह नहीं ली जा सकती, अथाह, जैसे सागर अथाह है। तीसरा अर्थ है बेहद, अर्थात जिसे गिना नहीं जा सकता, अगण्य है, अगम है। एक अर्थ है जिसे जाना ही नहीं जा सकता, अनफैथमेबल, अज्ञेय है, जिसे नहीं जाना जा सकता, अनअंडरस्टूड। एक अर्थ है एब्सोल्यूट, संपूर्ण, ऑल, सब कुछ इंक्लूड करते हुए बेहद। एक अर्थ है अनकंडीशनल, अर्थात बेशर्त। एक बेहद शब्द है, परंतु अर्थ बहुत है। तो आज क्या तारीख है? 3। बाबा 5 तारीख को आ रहे हैं, और ये वर्ष पूरा होने के लिए कितना दिन बाकी है? 28 दिन बाकी है। 28 दिन के बाद 2018 चालू होगा। तो बाबा ने आज की पाली में कहा है संपूर्ण ज्ञान का सार केवल एक शब्द है बेहद, चारों ही विषयों का सार केवल एक शब्द है बेहद। इसी बेहद शब्द के अर्थ स्वरूप में टिक जाना अर्थात संपूर्णता अर्थात विजयी रत्न अर्थात कर्मातीत स्टेज। तो ऐसे हम एक शब्द बेहद के मुरली में बताए हुए ऐसे 28 अलग अलग अर्थ, ऐसे 28 अलग अलग महावाक्य क्या है उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मुरली की शुरुआत में ही 7 बार बेहद शब्द है, 1 भगवान के लिए, 1 स्थान के लिए और 5 हमारे लिए। कौन आया है? बेहद का बाप, हद का नहीं, बेहद का, अनलिमिटेड। वेदों ने जिसके लिए कहा है नेति नेति, नासदीय सूक्त है ऋग्वेद में, सृष्टि से पहले कौन था पता नहीं, सृष्टि का कौन है कर्ता या विकर्ता, सृष्टि के पहले कौन था पता नहीं, किसने ये जगत बताया बनाया पता नहीं, करता है या अकर्ता वो पता नहीं, ऊंचे आकाश में रहता सदा अध्यक्ष बना रहता है या न है वो भी पता नहीं, जानता या न जानता वो भी नहीं पता, किसे भी पता नहीं, नहीं है पता। सुना होगा गीत, वह जिसे कोई नहीं जानता, क्या हमने जाना है? क्या हमने जाना है? एक छोटा सा बच्चा एक जल्दबाजी में पेंटिंग निकालता है, पिताजी आते हैं पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो बेटे, वो कहता है पापा मैं भगवान का चित्र निकाल रहा हूँ। पापा कहते हैं बच्चे बेटा परंतु भगवान को तो किसी ने देखा ही नहीं, तुम भगवान का चित्र कैसे निकाल सकते हो। तो बच्चा कहता है आप फिक्र नहीं करो, जब मैं निकाल दूंगा तो सब देखेंगे। हर एक ने भगवान का अपना अपना एक चित्र निकाल के रखा है। भगवान यहाँ पर ब्राह्मणों के सामने है, फिर भी ब्राह्मणों में भी भगवान को हमने अपने अपने रीति से जाना है। उसका जो चित्र मानस पटल पर है, उसका जो चित्र हमारे हृदय में अंकित है, वो हमारा अपना है। वो कह तो सब रहा है, बता सब कुछ रहा है स्वयं के बारे में, फिर भी हमने उसे जैसे जाना है वो अपने ढंग से जाना है, ना वैसे ढंग से जैसे कि वो है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे तब संपूर्ण बन जाओगे। अर्थात नहीं जाना है तो कौन आया है? बेहद का बाप, वह जो असीम है, वह जो अपार है, वह जो अमित है, वह जो अपरिमित है, वह जो बेशुमार है, अखूट है, अखंड है, एब्सोल्यूट है, समग्र है, सापेक्ष नहीं, रिलेटिव नहीं, वह आया है। तो एक बेहद है वो, एक बेहद है स्थान के लिए, ये स्थान भी बेहद का है। एक जगह कहा घर, धरती पर साकार वतन में ये स्थान बेहद का स्थान है, जिस स्थान पर भगवान आते हैं। ये दूसरा बेहद, और 5 बेहद है हमारे लिए। क्या क्या है हम में? बेहद की बुद्धि, अर्थात कौन सी बुद्धि? जो बुद्धि मैं से रिक्त है, जो बुद्धि मैं करता हूं, मैं जानता हूं, मैंने किया, मेरी विशेषता, मेरी तपस्या। तपस्या मैं की थाली में आते ही विषाक्त हो जाती है। जब तपस्या मैं बनती है, व्यक्ति बनती है, विषैली बन जाती है। ऐसी निर्व्यक्ति तपस्या बेहद की बुद्धि, जिसमें गर्व नहीं, अभिमान नहीं। दूसरा बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद के सेवाधारी, बेहद की स्थिति। बेहद की दृष्टि अर्थात विहंगम दृष्टि, एक ऊंची दृष्टि, एक ऐसी दृष्टि जो पहले ना थी। विदेश में एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटर, चित्रकार कभी हुए थे, विंसेंट वैन गॉग। शायद ही उसकी प्रतिभा का कोई दूसरा चित्रकार इस धरती पर अब तक हुआ है। फ्रांस के किसी स्थान पर बैठकर वो एक संध्या सूर्यास्त का चित्र बना रहा था। एक महिला उसके पास आई और वो देखने लगी उस चित्र को। ऐसा अद्भुत, अप्रतिम, अनूठा, अद्वितीय चित्र था वो, कि वो देखते ही रह गई और उससे कहने लगी, आप यही रुको, मैं अभी अभी घर जाती हूँ, भागती हूँ और मेरे भाई को, मेरे पिता को, मेरी बहन को, मेरी माँ को बुलाकर बताती हूँ कि ऐसा सूर्यास्त यहाँ हो रहा है। सूर्य सागर का किनारा है, साहिल पर बैठकर वो चित्र निकाल रहा है। वैन गॉग उससे कहता है, परंतु तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, सूर्यास्त तो वहां पर भी हो रहा होगा। वो कहती है, नहीं, मैं कितने सालों से यहां रहती हूं, कई सूर्यास्त हमने देखे हैं, परंतु आपने जो बनाया ऐसा नहीं देखा, शायद अब तक जो देखा वो देखा ही नहीं, पहली बार आप दिखा रहे हो, ये है सूर्यास्त। जो सूर्यास्त देखा वो देखा ही नहीं, जो जाना वो जाना ही नहीं, देखते हुए भी अनदेखा रह गया है। आप आए तब हम जान रहे हैं, इसे कहते हैं सूर्यास्त। संसार तो पहले भी था, संसार को तो पहले भी देखा था, परंतु जो तुमने दिखाया वैसा नहीं देखा था, जो तुमने दृष्टि दी वैसी नहीं देखी, उस दृष्टि से नहीं देखा। तीसरा नेत्र उसने जो प्रदान किया, उस दृष्टि से देखना अर्थात बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति। जो संकल्प होंगे वैसी ही वृत्ति होगी। बेहद की स्थिति, बाबा कह रहे हैं तुम सबकी कैसी है, बेहद की स्थिति है, हद की स्थिति नहीं, जो कि डावाडोल होती रहे। बेहद की स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति, अचल अडोल स्थिति, महान स्थिति, ऐसी तुम्हारी है, भगवान ऐसे कह रहे हैं। बेहद के सेवाधारी, अपने घर की खाली सेवा करने वाले नहीं, एक व्यक्ति की सेवा करने वाले नहीं, एक परिवार की सेवा करने वाले नहीं, एक समाज की सेवा करने वाले नहीं, एक राज्य की सेवा करने वाले नहीं, एक राष्ट्र की सेवा करने वाले नहीं, किंतु समूचे विश्व की सेवा करने वाले, ऐसे बेहद के सेवाधारी। तो आज कौन किसको देख रहा है, बेहद का बाप, बेहद स्थान पर बेहद सेवाधारी बच्चों की बेहद स्थिति को देख रहा है, बेहद दृष्टि को देख रहा है, बेहद वृत्ति को देख रहा है। तो ये सात बेहद, उसके बाद चार और, 28 दिन बाकी है नए साल को, एक एक दिन एक एक पर काम करना है। फिर चार, चार में पहला द फर्स्ट एंड द लास्ट, आदि और अंत। इसका आधार भी क्या है? बेहद। उसमें बाबा ने उदाहरण दिया है, जब तुम ज्ञान में आते हो, बाप के बनते हो, मर्जीवा बनते हो, तो बेहद आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हो। हद देह है, देह से तुम ऊपर उठ गए हो। आत्माभिमानी स्थिति बेहद की स्थिति है। और अंत सभी रिश्तों से पार। कौन सी स्थिति? फरिश्ता स्थिति, वो भी बेहद की स्थिति है। द फर्स्ट एंड द लास्ट, द अल्फा एंड द ओमेगा, आदि और अंत, प्रथम और अंत। ये कैसा है तुम्हारा? बेहद का है, हद का नहीं है, गिनने वाला जैसा नहीं है, अगण्य है, बेशुमार है, अथाह है, एब्सोल्यूट है, समग्र है। पहला। दूसरा, पुरुषार्थ और प्राप्ति, ये दोनों ही तुम्हारे बेहद है। पुरुषार्थ भी बेहद तो प्राप्ति भी बेहद की है। क्या ऐसा पुरुषार्थ बेहद है? स्वयं से प्रश्न पूछना है। यदि स्वयं के मन में प्रश्न नहीं उत्पन्न हो रहे तो स्थिति वैसी ही है। जो किताब आई है उसको पुस्तकालय में रख दो, कम से कम देने वाले को बुरा तो ना लगे। लक्ष्य और लक्षण। तीसरा, लक्ष्य भी बेहद के, बेहद का तो लक्षण भी बेहद के। परंतु जब लक्ष्य बेहद का होगा तो भी लक्षण बेहद के आएंगे। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। अंग्रेजी में कहावत है, असफलता नहीं अपराध, परंतु छोटा सा देह रखना, ध्येय रखना, यह अपराध है। ध्येय को कैसे रखो? बहुत ऊंचा। केवल पास होने का लक्ष्य रखो तो फेल ही होंगे। हाँ, फर्स्ट होने का लक्ष्य रखो तो कम से कम पहले पांच में आ सकते हो। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। तीसरा, स्मृति बेहद और समर्थी बेहद। तीसरा नहीं, चौथा, स्मृति और समर्थि। जैसी स्मृति है वैसी ही समर्थि है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा है और अचानक कमजोर हो जाता है। क्यों? क्या हो गया? फीवर, बुखार, खांसी, क्या हो गया? कमजोरी कहां से आ गई? कोई बीमारी आ गई? क्यों बीमार, क्यों कमजोर हो गया अचानक? शरीर तो वही है, क्यों शिथिल गाथ हो गया? दांड उसका, धनुष गिरा जा रहा है, क्यों? क्योंकि स्मृति कमजोर हो गई। तो वह व्यक्ति जो अभी युद्ध करने वाला था, क्या हो गया उसको? वो शौर्य, वो पौरुष, वो सामर्थ्य, वो बल, वो साहस खो गया। भागने की सोच रहा है और अपनी कायरता को हिंसा में अरुचि का नाम दे रहा है। स्मृति बेहद की तो समर्थी होगी, वो भी बेहद की। तो चार, द फर्स्ट एंड द लास्ट, पुरुषार्थ और प्राप्ति, लक्ष्य और लक्षण, स्मृति और समर्थि, चार। उसके बाद में दो और, अनेक मेरे जो है उसको क्या कर दो? एक मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इसमें समा दो। इस बेहद के मैं में समा दो, इस बेहद के मेरे में समा दो। अनेक जो है, हदों में क्या है? अनेक है हदे। बाबा ने कहा लिस्ट बनाओ, बनाई सबने, होमवर्क था आज की मुरली से। एक भाई ने हमको लिस्ट बना के भेजी है 100, हद की 100 बातें। अगर नहीं बनाई तो डायरी, बाबा ने कहा माल बहुत है तुम्हारी डायरी में, बोला है आज तुम्हारी डायरी में माल बहुत है, अनेक मेरो को क्या कर दो, एक में समा दो। ये पहला। दूसरा, बेहद, अर्थात बाप को फॉलो करना। उसने तीन स्टेजेस बताई, एक है नोट करना डायरी में, किताब में, कॉपी में, दूसरा है बोलना, वक्ता बनना। बाप से भी अच्छा बोलते हो, बाप के भी सिरताज हो बोलने में, एक ही पॉइंट को खींच खींच के अच्छे से बताते हो। कंपटीशन हो जाए। चार्ली चैपलिन था कभी संसार में एक व्यक्ति, उसके रहते ही एक कंपटीशन हुई थी, उसके जैसी कौन एक्टिंग करके बता सकता है, और उसके जैसे दिखने वाले जो भी होंगे वो आ जाए, तो बहुत सारे लोग आए, परंतु एक व्यक्ति बिल्कुल उसके जैसा दिखता था, और उसने जो एक्टिंग की, चार्ली चैपलिन भी उस कंपटीशन में गया था और चुपके से बैठा था, परंतु उस व्यक्ति ने चार्ली चैपलिन को भी मात दे दी, चार्ली चैपलिन की ही एक्टिंग करने में, इतनी कुशलता से उसने एक्टिंग की थी चार्ली चैपलिन की, चार्ली चैपलिन को भी मानना पड़ा, तुम तो मेरे भी बाप हो। ये दो तक तो तुम पहुंच गए हो, नोट करना, लिखना, दूसरा सुनाना, परंतु एक तीसरी भी अवस्था है, द थर्ड, वो है पार जाना, उपराम जाना, बंधन में नहीं फंसना, कोई भी बंधन तुम्हें स्वीकार ना हो, तार, लकीर, जंजीर, कोई भी तार, कोई भी जंजीर, कोई भी लकीर, कर्म जो है वो भी एक कल्पवृक्ष है। कितनी सुंदर उपमा की है। पांचवी जो डाली है वो कौन सी है, सोने की, हीरे की, डायमंड डाली, डायमंड ब्रांच, और उसमें सोने की जंजीरें कौन सी है, हद की कामना, श्रेष्ठ कर्मों में हद की कामना, ये भी बंधन है। बंधन तो बंधन है, विकर्म छूट गए, पाप कर्म छूट गए, अब कौन से कर्म कर रहे हो, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, ये है हीरे की डाली, परंतु उस श्रेष्ठ कर्म में, उस श्रेष्ठ सेवा में, उस बेहद की सेवा में हद की कामनाएं लाना, ये क्या है, बंधन। सेवाएं बहुत की परंतु मैंने किया, ये बंधन। रामकृष्ण एक कहानी बताया करते थे तीन डाकुओं की। जंगल से एक व्यक्ति गुजरता था, तीन डाकुओं ने उसे पकड़ा, एक डाकू ने उसे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, दूसरे डाकू ने उसे बांध दिया रस्सी से झाड़ पर, तीसरा डाकू बेचारा, थोड़ा सा दया आ गई उसको, उस व्यक्ति पर, तो उस तीसरे डाकू ने उसे खोल दिया, जब दूसरे दो डाकू सो रहे थे, और उस व्यक्ति से कहा कि तुम यहां से चले जाओ, वो रास्ता है गांव की तरफ का। पहला डाकू है तमोगुण, बहुत मारता है, दूसरा डाकू है रजोगुण, जुबान के रखता है, परंतु जो छुड़ाने वाला है वो भी डाकू ही है, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म, महान कर्म, पुण्य कर्म जो करते हो उसमें भी अहम आ जाता है, वो केवल रास्ता बता सकता है, वो देखो वहां है, वो सतो प्रधान अवस्था नहीं है, वो भी सतो है, सतो में भी बंधन है, सतो में भी बंधन है, इसके लिए तीनों ही डाकुओं से पार जाना है, सतो रजो तमो। बाबा कहते हैं सतो प्रधान, अपने आप को देखो, कौन से बंधन है, कौन सी हदें है, कौन सी जंजीरें है, कौन सी सलाखें है, कौन सा पिंजरा है, सोने की जंजीरें, कौन है जिसने मुझे रोका है, कौन सा संस्कार है जो मुझे बढ़ने नहीं दे रहा है और क्यों उससे छूट नहीं पा रहा हूं, इतने लंबे समय से ये बंधन क्यों चल रहा है। और अपने ही बंधन को हमने संबंध कहा है, अपने ही दुख को हमने सुख की परिभाषा, सुख की संज्ञा दे रखा है, इसलिए उससे छूट ही नहीं पा रहे हैं। है दुख, है असार सार समझा है कुरूप सुंदर समझा है, क्यों नहीं छूट पा रहे, क्या कारण हो सकता है। जंजीरों का हमें पता है, पिंजरे का हमें पता है, छूट नहीं पा रहे, क्या कारण है। एक मनोवैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया था, उसने क्या किया, एक उबलते हुए पानी के पानी में, एक बर्तन में उबलता हुआ पानी था, उसमें एक मेंढक को फेंक दिया। जैसे उस मेंढक को उस उबलते हुए पानी में फेंका, मेंढक उसमें गिरा और छलांग लगाकर बाहर आ गया। उसने दूसरा प्रयोग किया, एक कुनकुने पानी में या ठंडे पानी में एक दूसरा मेंढक फेंका, तो मेंढक तो बड़ा मस्ती से उसमें तैरने लगा, फिर धीरे धीरे उस पानी को गर्म करना चालू किया। मेंढक अभी भी तैर रहा है, पानी गर्म होते गया, मेंढक एडजस्ट होता गया और एडजस्ट होता गया, एडजस्ट होता गया, पानी का तापमान बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, मेंढक एडजस्ट होता गया, होता गया, होता गया, और तापमान उतना ही पहुंच गया जितना कि पहले पानी में था, फिर भी मेंढक वही रहा और मर गया। क्यों, क्यों, बंधनों के साथ एडजस्ट होता गया, हदों में एडजस्ट होता गया, जंजीरों में एडजस्ट होता गया। जब व्यक्ति को ऐसी गहन प्रतीति हो जाती है, एक्सपीरियंस कि ये खतरा है, ये डेंजरस है, ये नुकसानदायक है, ये श्रीमत के विरुद्ध है, खतरा संकट उसे दिखाई देने लगता है, तुरंत बाहर निकल जाता है। ऐसा संकट इस संसार में दिखाई दे कि संसार ऐसा ही उबलता हुआ और जलता पानी है, असार है, अनित्य है, कुरूप है, इस सुखों में दुखों को जो देख ले वो इससे बाहर निकल जाता है। जो संबंध है इतने लंबे समय से हम चला रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ, एक व्यक्ति के साथ, शायद वही संबंध बंधन है, वही बाधा है, वही कंटक है। और मार्ग को यदि निष्कंटक करना है, उस कांटे को निकाल कर फेंकना होगा, या फिर जो हाल दूसरे मेंढक का हुआ, एडजस्ट करता गया, पानी थोड़ा थोड़ा तापमान बढ़ा, उसे पता ही नहीं चला कब बढ़ रहा है, एडजस्ट करता गया, करता गया, करता गया, और अंत तो गत्वा मर गया। हम कौन से मेंढक हैं, पहले या दूसरे? यह जान लो, यह हद है, यह जान लो, ये लकीर है, ये तार है, 10 तार यदि निकल जाए और एक बाकी रहे तो भी बंधन है। पंछी उड़ नहीं सकता, उड़ते पंछी हो या बंधन वाले पंछी हो, एक मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा था 21/11/81 छोड़ो तो छूटे, 21 नवंबर 1981। आज बाप दादा एक बेहद का अर्थ सहित अलौकिक वृक्ष को देख रहे हैं। एक वृक्ष है जिसमें अलग अलग प्रकार के पंछी है, उन पंछियों के वजह से ये वृक्ष और ज्यादा सुंदर हो गया। उस वृक्ष पर 3 प्रकार के पंछी है, पहले पक्षी है जो चिल्लाते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, बचाओ बचाओ बचाओ, वो जानते हैं कि हम फंसे हुए हैं, परंतु कमजोरी के पंजों से पकड़ के रखा है, परंतु कहते हैं परंतु छूटते नहीं है। दूसरे प्रकार के पंछी है, कमजोर है, छूटना चाहते हैं परंतु बल नहीं है, शक्ति नहीं है। तीसरे है भोले पंछी, उनको पता ही नहीं छूटना भी है, उनको लग रहा है ये श्रीमत चल रही है, सुविधाजनक श्रीमत, फिलॉसॉफी ऑफ कन्वीनियंस, ये श्रीमत है, बाबा ने कहा है और ये ऐसा ही है, इसको चलने दो। ये तीन प्रकार के पक्षी, कुछ पक्षी है जो उंगली पर है वो श्रीमत वाले हैं, जो बाप की उंगली पर, बाबा इधर है, वृक्ष सामने है, कुछ उंगली पर बैठे हैं जो श्रीमत पर चलने वाले, कुछ पंछी है जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं, देखेंगे करेंगे सोचेंगे ये गे का गीत गाने वाले हैं। छोड़ो तो छूटे हो, पकड़ा किसने है, तुमने पकड़ा है, छोड़ो, दूसरा कैसे छोड़ेगा, और दूसरे के छोड़ने से तुम नहीं छूट सकते। जिसे पकड़ा है उसे छोड़ दो, छोड़ने में ही भलाई है। एक चील मांस का टुकड़ा लेकर आकाश में उड़ रही थी, उसके पीछे बहुत सारे पक्षी उसका पीछा कर रहे थे। उस चील को लगा ये सब मेरे पीछे क्यों है, वो और तेजी से भागने लगी चील, और अचानक उसके पंजों में जो मांस का टुकड़ा था वो गिर गया, और जैसे ही मांस का टुकड़ा गिरा वो सारे पक्षी उसके जो पीछे थे उसको छोड़ दिए और मांस के टुकड़े के पीछे चले गए। वो पंछी झाड़ पर बैठता है और फिर सोचता है ये मेरे पीछे नहीं थे, उस मांस के टुकड़े के पीछे थे। उपनिषद कहते हैं वो पक्षी तुम हो, साक्षी स्थिति में बैठकर देखो कि ये बंधन है, उसको छोड़ो, तो उसके पीछे जो दुखों के पक्षी तुम्हारा पीछा कर रहे वो भी तुम्हें छोड़ देंगे। छोड़ो तो छूटे। सेवन प्लस फोर प्लस टू कितने हो गए, ग्यारह तेरह। अब माताओं से मुलाकात, उसमें छह बेहद। माताएं कौन है, बेहद की जगत माता है एक, दूसरा जगत कल्याणी है, घर की कल्याणी नहीं है, बेहद की कल्याणकारी है, बेहद की कल्याणकारी और बेहद की माता। बाबा ने माताओं को क्या क्या कहा, और ये दो उसमें से बेहद के कौन है, माताएं गुरुमुख, कौन है माताएं गौमुख, कौन है माताएं बाबा, कौन है गोपाल है, वो गोपाल है, वो गोपाल है। वंदे मातरम कहा बाबा ने, भले पधारे कहा, अनुभवी हो कहा, बाकी तो टीचर्स को तो ट्रेनिंग देनी पड़ती है। एक मुरली में बाबा ने कहा था बाप को कुमारियों से अधिक प्यार है, क्यों, क्योंकि इधर उधर ज्यादा फंस जाती है, इसके लिए उनको प्यार ज्यादा करना पड़ता है, ऐसा बाबा ने कहा था। तो माताओं के लिए दो, बेहद की जगत माता और बेहद की कल्याणकारी। हद की कल्याणकारी नहीं, एक घर की कल्याणकारी नहीं, विश्व की, सारे जगत का सोचने वाली यह स्थिति, ये दो। फिर से माताओं से बात की है, उसमें और चार बेहद। पहला बेहद का अविनाशी सितारा चमकता हुआ और दूसरों को प्रेरणा देने वाला, ऐसे तुम हो। दूसरा बेहद के सुहागिन, सदा स्मृति का तिलक लगा हो, ऐसे सुहागिन। बेहद के उड़ता पंछी, फिर एक बार यहां पर बंधनों की बात की, उड़ो। अगर किसी को प्लेन में जाने की आदत पड़ जाए फिर तो बाकी सब, ट्रेन तो बिल्कुल पसंद नहीं आती और बाकी तो बैलगाड़ी जैसा ही लगता है। प्लेन तो जब समय है उड़ने का तो चढ़ती कला भी कहां क्या है, फिर वो ट्रेन ही है। और जिस समय जमा करने का समय, जो समय है वही काम करो, जागने का समय है तो सो नहीं, वेला है जागरण की, जागो हे आत्मन। तो बेहद की, बेहद का अविनाशी सितारा, बेहद का, बेहद की सुहागिन, बेहद का उड़ता पंछी, और चौथा बेहद के अधिकारी। मेरा राज्य, मेरा भाग्य, मेरा भगवान। तो माताओं के लिए ऐसे छह बेहद। फिर सेवाधारियों से मुलाकात, उसमें सात आठ बेहद। सबसे पहला सेवाधारियों को बाबा कह रहे हैं, तुम्हें बेहद की गिफ्ट मिली है मधुबन में। बेहद की गिफ्ट या बेहद का वरदान कौन सा? सेवा में कौन कौन आए हैं सेवाधारी? तो सबको कौन सी गिफ्ट मिली है यहां आते ही? सेवा ही गिफ्ट है। भगवान के यज्ञ में सेवा करना कितनी बड़ी गिफ्ट है, कितना पुण्य जमा हो रहा है। निमित्त बन रहे हो, समय पर निमित्त बन रहे हो, भगवान के कार्य में सहयोग दे रहे हो, कितनी बड़ी बात है। हम भूल जाएंगे पर वो नहीं भूलेगा कि ये वो आत्माएं थी जब मैं धरा पर आया। द्वापर से तो हम उसे भूल जाएंगे पर उसे तो याद रहेगा कि नहीं, ये वही आत्मा है जिन्होंने मुझे सहयोग दिया था, ये वही आत्मा है जिन्होंने अपना सर्वस्व मेरे यज्ञ में स्वाहा किया था, होम कर दिया था, अर्पित कर दिया था। ऐसी ये समर्पिता है, उसे तो याद रहेगा ना। तो बेहद का वरदान, बेहद की गिफ्ट। दूसरा, बेहद की विशेषताएं। बाबा ने कहा तुम सभी बेहद के हो, तुम सब में बेहद की विशेषताएं है, और बाबा हर एक बच्चे की विशेषता सामने रखता है, कोई भी साधारण कर्म ना हो। स्वयं में भी है और दूसरों में भी विशेषताओं को देखना, बेहद की विशेषताएं। तीसरा, बाबा ने कहा जब भी कोई सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, बाप समान बेहद की स्थिति में स्थित रहो, फिर प्लान बनाओ, फिर सेवा करो। तीसरा, बेहद का पहला स्टेप, ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा। अब तक जितनी बातें बताई अपने मन में, उस एक शब्द को आंखों के सामने लाओ, बेहद, और उस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में टिक जाना। बेहद का बाप, बेहद के सेवाधारी, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की बुद्धि, बेहद की स्थिति, बेहद के एक मैं में सारे मैं समाये हुए, बेहद के फॉलो फादर, बेहद के सुहागिन, बेहद के चमकता हुआ सितारा, बेहद के उड़ता पंछी, बेहद के अधिकारी, और अभी जो बात कही, बेहद के सेवाधारियों में सबसे पहली पॉइंट बताई थी गिफ्ट, बेहद की गिफ्ट, बेहद की विशेषताएं। कुछ और बचे हैं ट्रैफिक कंट्रोल के बाद, तब तक इस शब्द में स्थित हो जाएंगे। तीसरा, बेहद की पहली स्टेप, और वो पहली स्टेप कौन सी है? अपनेपन की भावना। सभी को क्या लगे, ये मेरे हैं। जैसे बाबा के लिए कहते हो मेरा बाबा, उसी तरह कभी ये नहीं कहते हो कि तेरा बाबा, उसी तरह सब क्या कहे, ये मेरा है, ये हमारे हैं, ये हमारापन महसूस होना सेवाओं में, ये है फर्स्ट स्टेप, पहली स्टेप। तो बेहद की पहली स्टेप। चौथा, बेहद का प्लान। जो भी प्लान्स बनाओ वो बेहद के हो, वो ऐसे प्लान हो जिसमें हमारे साथ साथ बाकियों का भी कल्याण हो। तो ये पहले चार। फिर और चार, बेहद की शुभ भावना और शुभ कामना। अगला, बेहद के बुजुर्ग, बुजुर्ग अर्थात अनुभवी, तजुर्बेदार, काकाजी और पिताजी, अनुभवी बन जाना, एक स्वयं के अनुभव से, एक दूसरों के अनुभव से, जो जीवन में चोटें खाई है, जो हर्ट हुए हैं, जो इस ब्राह्मण बनने के बाद के जीवन में जो कुछ अनुभव आए हैं, वो केवल अनुभव मेरे तक सीमित न रह जाए, परंतु सारे विश्व के सारी दूसरी ब्राह्मण आत्माएं भी उससे लाभ उठाए। जो गलतियां मैंने की, जो चोटें मैंने खाई, जिस गलती के वजह से मैं गिरा, जो विकार ने मुझे सताया, अब मुझे मदद करना है दूसरों को। जो गलतियां मैंने की, अब वो गलतियां वो ना करे। जिसको मैंने एकदम छोटी सी चीज समझी थी और वो कितनी बड़ी बन गई। इस अनुभव के बाद प्रायश्चित यही है कि दूसरों को हम अपनी अपने अनुभव से सिखाएं। ये भी एक सेवा है। बेहद के स्नेह के भंडार बनो, हर दृष्टि में हर संकल्प में क्या हो, आत्माओं को स्नेह नजर आए। और लास्ट तंदुरुस्ती की परिभाषा, मन तंदुरुस्त हो। शरीर को कुछ ना कुछ तो होगा, परंतु भोगना क्या बन जाए, योजना। पलंग पर बैठकर क्या करो हॉस्पिटल में या घर पे जब बीमार हो तो, प्लानिंग करो। विष्णु के जैसे, ब्रह्मा बाप के जैसे, सागर के तले में चले जाओ, मनन करो। समय बहुत है उस समय जब बीमार पड़ते हैं, फ्रैक्चर ही हो गया, कहां भागेंगे अब। या नियति को, भाग्य को, ड्रामा को, बाबा को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को, समय को, स्थान को, स्वयं को दोषी ठहराते बैठेंगे। एक तो ब्लेम गेम है, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। स्थान, व्यक्ति, समय, भाग्य, ड्रामा, भगवान, खुद मैं, सबको दोष देता है व्यक्ति। बैठकर बहुत टाइम होता है व्यक्ति में आ जाएगा तो उस समय क्या करना है, चिंतन, मनन, गहराई में जाओ, मोती लेके आओ। समय को, वो भी समय को सफल करो। अब वो सेवा की, अब मन से सेवा करो। इसको कहते हैं तंदुरुस्ती। मन सदा तंदुरुस्त तो बेहद की तंदुरुस्ती, इसको कहा बाबा ने महावीर। तो हो गए 27। एक लास्ट है 28वां पॉइंट, जो कि हम लेंगे प्रश्न उत्तर से। बेहद की अखूट अविनाशी कमाई, बेहद की अखूट अविनाशी कमाई। कैसी है ये कमाई? खुशी वाली। कोई छीन सकता है, कोई चुरा सकता है, कोई लूट सकता है? वो सुदामा दिखाया है, निकलता है, कृष्ण से मिलने जाता है, तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम अकेले जा रहे हो, किसी को साथ तो ले लो, अगर कोई चोर डाकू आ जाए और तुमको लूट ले तो। वो कहता है मेरे पास कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, और यदि कोई उसे लूट ले तो वो भी भक्त बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहा, अगर इस कमाई को कोई छीन ले, लूट ले तो खुश हो, उसको कहो लो, वो भी मालामाल हो जाएगा। ऐसी ये कमाई है, इसमें गड़बड़ नहीं। स्पिरिचुअल इनकम इनविजिबल है, ये अदृश्य है, परंतु हो रही है। तो ऐसे ये 28 बेहद है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर क्लास को पूरा करते हैं। पहला, बेहद का बाप, बेहद के स्थान, बेहद का घर जिसको बाबा ने कहा एक जगह, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की बुद्धि, बेहद के सेवाधारी स्थिति। फिर दो, चार, बेहद में फर्स्ट और लास्ट, पुरुषार्थ और प्राप्ति, लक्ष्य और लक्षण, बेहद का स्मृति और समर्थि। चार प्लस दो, एक नए में अनेक समा जाए। दूसरा फॉलो फादर, उसमें तीन बातें, नोट करना, बोलना और पार जाना, अर्थात सब बंधनों से पार, सब हदों से पार, जंजीरें तोड़ देना, पिंजरा तोड़ दो, लकीरें नहीं रहे, तार नहीं रहे कोई। उसके बाद माताओं के लिए बेहद की, जगत माता बेहद की, विश्व कल्याणकारी बेहद की, तिलक तिलक, सितारा, पंछी और अधिकारी, सब कुछ बेहद का। उसके बाद में सेवाधारियों से बेहद की गिफ्ट मिली है, सौगात मिली है, वरदान मिला है। बेहद का विशेषता है, बेहद की स्टेप, पहली स्टेप बिलोंगिंगनेस की फीलिंग, बेहद की लास्ट प्लान। उसके बाद में बेहद का शुभ भावना, शुभ कामना। उसके बाद में बुजुर्ग अनुभव, बेहद का अनुभव बाबा ने कहा। उसके बाद में बेहद के स्नेह के भंडार बन जाओ, स्नेह बांटो। और फिर लास्ट तंदुरुस्ती, और लास्ट 28वां बेहद की अविनाशी अखूट कमाई। ऐसे कैसे कैसे ऐसे सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को ऐसे उड़ते पंछी अर्थात सदा उड़ती कला में रहने वाले बच्चों को ऐसे सदा अपनी अंतिम फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने वाले बच्चों को ऐसे सदा बाप समान कर्म बंधनों से कर्मातीत ऐसे क्या मंजिल के समीप श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।